ॐ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रातः काल प्रसंग चल रहा था, मस्तिष्क के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव। इस हृदय में तो ज्ञान को बहुत कम लोग मानते हैं, भौतिक विज्ञानवादी तो इसको कोई महत्व नहीं देते हैं, परंतु मैं तो अव्यक्त जो ज्ञान होता है, छिपा हुआ सा, गहन सी अवस्था में जहां अनुभूति या प्रतीति होती है, वो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वहां मस्तिष्क का भान नहीं रहता है, और केवल ये भान रहता है कि मस्तिष्क की नहीं, शरीर का भी भान चला जाता है, और मस्तिष्क का भी भान नहीं रहता, या तो तुम दृष्टा के रूप में समझ लो, या दृष्टा रहता ही है, किसी के द्वारा किसी गहन अवस्था में पहुंचा हुआ है, तो वो उस वक्त बुद्धि ही होती है। तो बुद्धि के द्वारा जब किसी गहन सी अवस्था में पहुंचता है और ये देखता है उस वक्त पराभ्यासी कि जैसे मैं बाहर देख रहा हूं कोई चीज, जब हम आंखें खोल करके समाधि करते हैं, तब तो जो पदार्थ जहां होता है वो वैसा ही नजर आता है, और जब हम आंखें जगामा बहुशोभाम उमाम हेमवती ऐसे शब्द आते हैं वहां, जिस वक्त ये ब्रह्म विद्या सामने आती है, तस्याम आकाशे स्त्रियाम आ जगामा, जैसे स्त्री कोई बहुत रूपवती सुंदरी होती है और दूसरों के लिए आकर्षक होती है, ऐसे ये ब्रह्म विद्या भी उस आकाश मंडल में बड़ी शोभा, उमाम हेमवती शब्द दिया है, जैसे उमा पार्वती थी शंकर के लिए, हेमवती हिम से बनी हुई स्फटिक की तरह सफेद निर्मल स्वच्छ जैसे बर्फ चमका करती है, वह इस प्रकार की वह ये स्थिति इसकी स्त्रियां बहुशोभाम उमाम हेमव, बड़ी शोभायमान उमा के समान हेमवती, तो वो आन करके सामने आती है। तो ये उपनिषदकारों ने इसको ब्रह्म विद्या का रूप दिया है। तो ऐसी स्थिति इस बुद्धि में आ जाती है, वास्तव में बुद्धि प्रखर सी हो जाती है, उसमें कुछ ऐसा अनुभव में आता है, जब ज्योति को लेकर के जाते हैं तब तो ज्योति रूप सा प्रतीत होने लगता है, जब प्राण को लेकर के जाते हैं तब प्राण, ये उस अवस्था से पहली है, वो ज्योति रूप भासने लगता, प्राण रूप भासने लगता है, इससे आगे की एक और अवस्था आती है, ये ज्योति ज्योति ही रहती है और वो ही रहता है, और उसके रूप की बाहर किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं होती, कोई संसार का ऐसा पदार्थ है दृष्टि में नहीं आता, नजर में नहीं आया अभी तक कि उसके साथ उस रूप की तुलना कर सके, ज्योति के साथ भी तुलना नहीं बनती है, जल के साथ भी तुलना नहीं बनती है, प्राण के साथ भी तुलना नहीं बनती है, बुद्धि के साथ भी तुलना नहीं बनती, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, पर वो एक और इनसे ऊपर की अवस्था एक ऐसी आती है कि जब बिल्कुल शांत सी अवस्था में रह करके देखता है, किसी को माध्यम ही नहीं बनाता, जब सीधा अपने आप ही उससे संबंधित होता है, तब वो उसका विशुद्ध रूप ऐसा प्रतीत होने लगता है जिसको कहते हैं निशक्यते वर्णित मिला, वो एक स्थिति ऐसी आती है। और ये जो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवे की बात आई है, ये उससे पहले की बातें हैं, समझाने के लिए भक्तों को शिष्यों को, अब भाई देखो वो चीज ऐसी होगी जैसे ये आकाश है, अग्नि आई तो आकाश अग्नि की तरह भासने लगता, परंतु हम अग्नि को भी ना लाए, वायु को भी ना लाए, किसी को भी ना, आकाश का कुछ तो तत्व हमें भासता है, इस आकाश के रूप की भी किसी के साथ और पदार्थ के साथ तुलना नहीं होती, तो उसके रूप की तुलना किस, इस आकाश के समान जब कोई पदार्थ है उसका रूप तो मानना पड़ेगा ना। जब कोई सत्ता मौजूद है, आकाश भी सत्ता मौजूद है, हालांकि आकाश योग सांख्य की दृष्टि में उत्पन्न होने वाला चीज है और बहुत पीछे उत्पन्न हुआ ये आकाश, तो आकाश तो बहुत प्रकार का, प्रकृति में भी आकाश वर्तमान है। तो जब प्रकृति परिणित होने लगती है और एक क्षण से दूसरे क्षण में करवट बदलने लगती है, तब उसमें आकाश, काल और दिशा, ये तीन चीजें पहले पैदा होती हैं। सत्ता रज गुण तो पीछे की बातें हैं। तो पहले प्रकृति खड़ी है ऐसी परले काल की अवस्था में, अब उसको अवकाश चाहिए, इधर को या उधर को। खड़ी हुई को अपने अंदर ही अवकाश चाहिए, किस में? उसको ब्रह्म के अवकाश की जरूरत रहती है। ब्रह्म इतना सूक्ष्म है, जैसे वायु को इस आकाश की अपेक्षा रहती है, अग्नि को इस आकाश की अपेक्षा रहती है, जल को इस आकाश की अपेक्षा की जरूरत रहती है, ऐसे ही साम्य अवस्था प्रकृति को भी चेतन रूप भगवान के अवकाश की जरूरत होती है गतिशील होने के लिए। वैसे सूक्ष्म गति तो उसमें बनी रहेगी उस वक्त भी, सामान्य ऐसे कंपन बने रहेंगे जो विशेष लहरों वाले नहीं होंगे, विशेष सृजन वाले नहीं होंगे। जैसे रात्रि को हमारे अंदर जब हम शयन करते हैं तो प्राण का कार्य बना रहता ना, और सारे व्यवहार बंद हो जाते हैं तो प्राण जागरूक रहता है। तो प्रकृति के अंदर भी सूक्ष्म प्राण जागरूक रहता है, चेतन के संयोग से, प्रकृति के संयोग से। तीसरी जो एक चीज पैदा होती है उसका नाम है प्राण। वो प्राण ही गति का हेतु बनता है। तो ये दोनों के संयोग से पहला कोई पदार्थ अगर इसमें उत्पन्न होता तो प्राण पैदा होता प्रकृति में। और फिर अब ये चलेगी, ये तो साम्य अवस्था में जो 4-5 अरब वर्ष या 10 अरब वर्ष जितना भी वो रहती है, उतने काल तक एक ही समान, जैसे गाढ़ निद्रा में आपका एक ही समान बात बनी रहती है और कुछ नहीं होता। तो गाढ़ निद्रा जैसी वो प्रकृति की एक ऐसी अवस्था होती है, सूक्ष्म सामान्य कंपन उसमें बना रहता है, और विशेष कंपन जब ये प्राण वर्तमान रहता है, क्योंकि चेतन का संयोग है ना, जड़ और चेतन के संयोग से गति की उत्पत्ति होती, उस गति का ही नाम प्राण है। चेतन और जड़ के संयोग से जो गति हुई उसी का नाम प्राण है। अब वो विशेष रूप से परिवर्तन होने, फिर आकाश, उसको अवकाश चाहिए, फिर उसको इधर अवकाश है तो चेतन का अवकाश है। चेतन भी तो उसके लिए अवकाश रूप है, जैसे इन चार पदार्थों के लिए, भूतों के लिए ये आकाश अवकाश रूप है, ऐसे प्रकृति के लिए चेतन ब्रह्म भी अवकाश रूप है। तब उसको आकाश चाहिए, तो चेतन में आकाश मिलता है। अब चेतन का छोर मानोगे, आप कहोगे कहां तक उसको पहुंचा हुआ, वो असीम है, उसकी कोई सीमा का निर्धारित नहीं कर, और सीमा तो प्रकृति की भी निर्धारित नहीं होती। हम है व्यक्ति तो निर्धारित नहीं कर सकते, पर कोई होगी, अब उसको हम क्या कहें, हो या तो वहां वह चेतन सत्ता उसको अवकाश देती है, तो उसको आकाश अवकाश। फिर यह चलेगी, ये काल हुआ, किस और चलेगी, दिशा होगी। आकाश, काल और दिशा, ये तीन चीजें उत्पन्न होती हैं उसको चलने में, हरकतशील होने में, प्रारंभ होने में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक प्रकार से यहां तक चार अवस्थाएं आ गई। एक प्राण की अवस्था आएगी, एक आकाश की अवस्था आएगी, एक काल की अवस्था आएगी, और एक दिशा की, चार अवस्थाएं। अब तीन आ गए, सत्य और रज और तम के रूप में, अपरिणित प्रारंभ होना इसका विशेष अक्षोभ। आप परमात्मा के विशुद्ध रूप को समझना देखना चाहते हो तो न तो शब्द को माध्यम बनाओ, न प्राण को माध्यम बनाओ, न ज्योति को माध्यम बनाओ, न किसी और पदार्थ को माध्यम बनाओ। किसी प्रकार के शब्द को, प्राण को, ज्योति को, किसी को माध्यम ना बनाओ। सीधे ही आपकी दृष्टि उसमें जानी चाहिए, तब एक ऐसी अवस्था सी आ जाएगी, न वहां प्राण की बात न कोई ज्योति की बात, सीधा ही तुम्हारी बुद्धि का संबंध उस चेतना के साथ में अनिर्वचनीय सी, जिसके रूप का आप वर्णन नहीं कर सकोगे, कह नहीं सकोगे, और जब देखोगे वो वैसी अवस्था में आएगी। आज देखो, कल देखो, परसों देखो, वो उसी रूप में आएगी, पर उसके रूप की आप बाहर कल्पना नहीं कर सकोगे। तुम्हें तो निश्चय हो जाएगा कि मैंने ठीक इस चेतन सत्ता के, क्योंकि जिधर भी मेरी दृष्टि जाएगी उस काल में, जब वो चेतन सत्ता तुम्हारे सामने आती है तो इन सारे पदार्थों का अभाव सर्वत्र देखने में आता, केवल वही सामने आती है, और वो एक रूप में ही आती है, एक स्थिति में ही आती है, एक ही जो कुछ होता है उसमें, कभी कोई परिवर्तन नहीं उसमें देखने में आएगा। परिवर्तन कराते हैं ये जो तुम माध्यम बना करके, ज्योति को, प्रकाश को, प्राण को माध्यम बना करके जब तुम वहां जाते हो, तब उसमें भी परिवर्तन से, कंपन से प्रतीत होने लगते, वरना वहां कंपन की बात कभी नहीं होती। कंपन का हेतु बनते हैं जब उसके पदार्थ कोई सामने आ जाता है, जैसे अग्नि के सामने कोई चीज आ जाएगी, अग्नि उसको दग्ध कर देगी, तो वो कुछ ऐसी चीज है जो कुछ उसके सामने सी चीज आती है, वो कंपायमान गतिशील क्रियाशील सी हो जाती है। इसलिए बुद्धि दूर खड़ी हुई सी, शर्मिंदा सी होती हुई, लज्जित सी होती हुई, कंपायमान सी उसके सामने बनी रहती है, और वो विशुद्ध अवस्था एक समान ही रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता। जब देखोगे, और फिर अगर और व्यापक दृष्टि, ये तो एक देश की बात बनी, और व्यापक सी दृष्टि आप संसार में बनाओगे तो सारे विश्व के गर्भ के अंदर ही उसी प्रकार की वो चीज देखने में आएगी। फिर आप पदार्थों को माध्यम बना लो, जब आपकी समझ में विशुद्ध रूप आ जाए, एक बार 10, 20, 50 बार वो ही देख लिया, पक्का हो गया हो, फिर किसी पदार्थ के अंदर उसको देख सकोगे, पदार्थ उसमें रुकावट का हेतु नहीं बनेगा। जब योगी की रितम भरा बुद्धि बन जाती है अभ्यास के द्वारा, प्रजालोक और विषो का ज्योतिषमति, ये दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं, ये भी कुछ भ्रांत सी बना देती है, ये भी विशुद्ध रूप का निर्णय नहीं बतलाती। वहां जो रितंभरा प्रजा होती है, वो रितंभरा की अंतिम अवस्था जो होती है, वो बुद्धि वहां और पदार्थों से छाट करके उस चेतन सत्ता पदार्थ का वो निर्णय देती है। वहां और भी पदार्थ उस चेतन सत्ता के साथ घुले मिले रहते हैं ना, अकेली विशुद्ध तो नहीं वो रहती, सबके अंदर व्याप्त रूप सी रहती है, पर ये रितंभरा नाम की जो परजा ये उत्पन्न हो करके इन पर्दों को हटा सी देती है, और जो आवरण से पड़े हुए होते हैं चेतन सत्ता के मध्य में, क्योंकि व्यापक भाव संबंध सब पदार्थों के साथ में, तो वो पदार्थ हट जाते हैं विषो का, तो विशुद्ध जो वो या ज्योति समझो कुछ का, जो कुछ वो सत्ता है परमात्मा की, वो जो सर्व व्यापक रूप से वो वैसी ही फिर प्रतीत होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ऐसी अवस्था बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हम तुम्हें बहकाते हैं, अरे यहाँ ज्योति को पकड़ लो, यहाँ प्राण को पकड़ लो, ये तो तुम्हें खिलौने से देते हैं फैलाने के लिए। ऐसी कहीं बुद्धि बन जाए, कुछ ना सोचो, कुछ ना चिंतन करो, बुद्धि में खो जाओ, वो अपने आप दिखा देगी। बुद्धि में, विचार में खो जाओ, कोई सोचो नहीं, कोई चिंतन ना करो, अपने आप ही बुद्धि उस प्रकार की बन करके उसको तुम्हें ढूंढ के दे दे। तुलना, ये जो आकाश है, अगर ये सामने पर्वत आदि, मकान आदि ना हो, कुछ ना हो, ऊपर भी देखते हैं तो बादल नजर आ जाते हैं, नीला नजर आ जाते हैं, पर इतने पोल में जैसे सामने जिस वक्त आकाश को आप देखते हो, वैसा ही इसमें कोई रूप का परिवर्तन देखने में नहीं आता, कोई और किसी किस्म का परिवर्तन नहीं देखने में, सदा एक समान ये देखने में आता। ऐसे ही तुम्हारे अंदर इससे भी भिन्न कोई और आकाश विशेष, ऐसे तुम्हारे मस्तिष्क में कोई भान होने लगे, हृदय में भान होने लगे, कोई तुम उसका कुछ नाम रख लेना, अगर कोई ऐसा जिसमें कोई परिवर्तन ना देखो, जब देखो जैसे हम जब देखते हैं आकाश वैसे नजर आता है, जब हम उसको अंदर देखें वो वैसा ही नजर आए, उसी को तुम परमात्मा समझ लेना, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना देखो। कोई चीज तुम उसका कुछ भी देख लो, कुछ भी समझ लो उसको, ऐसी कोई चीज तुम्हारे अंदर खड़ी सी रहनी होनी चाहिए, जैसे आकाश हमारे लिए सदा एक समान खड़ा है, ऐसे तुम्हारे लिए इससे भिन्न अगर मैं इसी को कह देता परमात्मा तो इस पे तो बहुत संदेह हो जाता। तो इसी के समान जैसे आकाश सदा एक रूप देखने में आता, ऐसे एक रूप कोई ऐसी चीज तुम्हारे अंदर देखने में आए जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई तब्दीली ना हो, जब देखो वैसे बस उसको तुम परमात्मा समझ लेना। अवधान, अब ऐसे को ढूंढना इसमें और इधर उधर उलझन में ना पड़े रहना।